dari rada diri dari rade hari bol hari bol hari bol hari bol nita gol jaya jaya prabhupad 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 प्रभु का श्री श्री रघुराज सुश्रेष्ठ कम की जय निताय गुर हरि गमानंदे
हरे कृष्णा। आज सुबह का भागवतम सत्र होगा हिज ग्रेस पद्मनाभ प्रभु द्वारा। हिज ग्रेस पद्मनाभ प्रभु की शील प्रभुपाद की।
हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधागिरी धारी
जय राधागिरी धारी
जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा मैया जय गाय गौर हरि बोल नित्य गौ हरि बो जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव
श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सतस्त्र श्रीमते श्रीवाइंग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम नौवा स्कंद दसवा अध्याय श्लोक की क्रम संख्या है 27 9.10.27। न वै वेद महाभाग भवान कामवासं गतः तेजोनुभावं सीताया येन नितो दशाम इमाम। न वै वेद महाभाग न वै वेद महाभाग भवान कामवशं गतः भवान कामवशं गतः तेजोनुभावं सीताया तेजोनुभावं सीताया येन नितो दशाम इमाम येन नितो दशाम इमाम। महाभाग
तेजोनुभावं सीताया ये ननितो दशा
माताजी
न वै वेद महाभाग भवान काम वसम गत तेजोनुभावं सीताया ये ननितो दशाम्या न वै वेद महाभाग भवान काम वसम गत तेजोनुभावं सीताया न नहीं वै निसंदेह वेद जान पाया महाभाग हे भाग्यशाली भवान आप कामवसम काम के वशीभूत गतः होकर तेजः प्रभाव से अनुभावम ऐसे प्रभाव के फल स्वरूप सीताया सीता देवी के ये न जिसके द्वारा नीतः ले जाया गया दशाम स्थिति को इमाम इस प्रकार की यानी विनाश की अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा है। श्रील प्रभुपाद महाराज की श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। हे परम सौभाग्यवान तुम काम वासना के वशीभूत हो गए थे अतएव तुम सीता देवी के प्रभाव को नहीं समझ सके। तुम भगवान रामचंद्र द्वारा मारे जाकर सीता जी के साप से इस दशा को प्राप्त हुए है। तात्पर्य ऐसा नहीं है कि केवल सीता देवी ही शक्तिशाली थी अपितु कोई भी स्त्री सीता देवी के पद चिन्हों पर चलकर ऐसे ही बन सकती है। वैदिक साहित्य के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। जहां भी हम आदर्श सती स्त्रियों का वर्णन पाते हैं उसमें सीता जी का नाम अवश्य मिलता है। रावण की पत्नी मंदोदरी भी परम सती थी। इसी प्रकार द्रौपदी भी पांच सतियों में से है। जिस प्रकार मनुष्य को ब्रह्मा नारद जैसे महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए उसी प्रकार हर स्त्री को भी सीता मंदोदरी द्रौपदी जैसी आदर्श स्त्रियों के पथ का अनुसरण करना चाहिए। सती रहकर तथा अपने पति के प्रति आज्ञाकारिणी बनकर स्त्री अपने को दैवी शक्ति से संपन्न करती है। यह नैतिक सिद्धांत है कि मनुष्य को मन में पराई स्त्री के प्रति विषय वासना की भावना नहीं लानी चाहिए। मात्रवत परदारेषु बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि पराई स्त्री को अपनी माता के तुल्य देखे। यही चाणक्य श्लोक का आदेश है। मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। जो कोई पराई स्त्री को अपनी माता की तरह पराए धन को धूल के समान तथा सारे जीवों को अपने समान मानता है वही पंडित माना जाता है। इस तरह रावण न केवल भगवान रामचंद्र द्वारा अपितु अपनी ही पत्नी मंदोदरी द्वारा भी धिक्कारा गया। चूंकि वह सती स्त्री थी अतएव वह अन्य सती की विशेषतया सीता देवी जैसी पत्नी की शक्ति को जानती थी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद महाराज की निताई गौर प्रेमानंदे। सर्वप्रथम मैं आप सभी उपस्थित वैष्णवों के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप लोगों से ये नम्र निवेदन है कि कृपया आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे ये जो सेवा दी गई है जिसके लिए मैं लायक नहीं हूँ आप सभी लोग जानते ही हैं, तो वो सेवा आपके आशीर्वाद से भगवान की कृपा से मैं शिला प्रभुपाद जी के प्रवचनों पर आधारित ठीक से कर सकूं, यही आशा है। हरे कृष्णा। ये रामायण का प्रसंग चल रहा है। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को पहले ही बताया कि बहुत अल्प समय होने के कारण और यह कथा बहुत ही प्रचलित होने के कारण मैं आपको बहुत ही संक्षेप में यानी ब्रीफली ये रामायण बताऊंगा, ऐसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। इसलिए इस अध्याय में और आने वाले अध्याय के दो अध्याय में ही पूरा रामायण थोड़ा थोड़ा बता के एक ट्रेलर की तरह चल रहा है। यहाँ पे कल का जो प्रसंग था, केशव प्रभु ने शायद कल के प्रसंग पे शायद ज्यादा नहीं बोला था और कुछ ही बता रहे थे। कल का प्रसंग में रावण भगवान श्री रामचंद्र द्वारा मारा गया था और उसका जो शरीर था वो पड़ा था लंका के युद्ध मैदान में अन्य पराजित सैनिकों के साथ में। वहां पे जो रावण की पत्नी मंदोदरी और अन्य जो सैनिक थे उनकी पत्नियां, ये सब लोग रो रो के बाहर आ रहे थे और आने के बाद अपने पति को मृत्यु अवस्था में देखकर रो रही थी। विशेष करके पिछले श्लोक में मंदोदरी का वर्णन आया है। रावण की पत्नी मंदोदरी तथा अन्य पत्नियां भली भांति जानती थी कि रावण कितना क्रूर व्यक्ति था। शिला प्रभुपाद जी लिखते थे, रावण शब्द का अर्थ ही है जो अन्यों को सताता है या रुलाता है, इसे रावण कहते हैं। इस श्लोक में न वै वेद महाभाग, देखिए इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है महाभाग, तो महाभाग जो संस्कृत शब्द है इसका अर्थ होता है महाभाग्यशाली, हाँ, ग्रेटली फॉर्चुनेट। महाभाग यानी महाभागवत नहीं है, तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाता है कि इसको महाभागवत नहीं कहा गया है, महाभाग्यशाली यहां पे बताया गया है। तो ये बात तो सही थी, रावण महाभाग्यशाली था क्योंकि उसके पिता जो थे वो महाभागवत थे, माता पिता जो उसका वंशज था वो महाभाग था और महाभागवत भी था, दोनों थे और वो पंडित था। बचपन से ही उसको अच्छा सा ट्रेनिंग मिला था, अच्छी तरह से उसको सारे वेदों का पठन पाठन यजन वगैरह करवाया था, ब्राह्मण परिवार से था। लेकिन कामवश होने के कारण उसने इस महाभाग को खो दिया। भगवान कामवशम गत, कामवशम, काम के वश हो चुका था ये भाग्यशाली व्यक्ति, गतः यानी वश हो गया था, इसीलिए इसका पतन हुआ। और पतन का मुख्य कारण तेजोनुभावम सीताया, सीता के तेज को न जानकर सीता का ही अपहरण करके लाया और फिर सीता से श्रापित हुआ। श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में यह भी बताया कि संसार में अनेक सतियां हुई है, लेकिन पांच सतियां प्रमुख है और महा प्रख्यात है। उस पांच सतियों में सीता का नाम सर्वप्रथम है, फिर द्रौपदी का नाम आ रहा है। कई बार स्त्रियां ये प्रश्न करती हैं जब उनको व्याख्यान दिया जाता है, शास्त्रों से बताया जाता है कि शास्त्र ये अपेक्षा करता है कि स्त्री को हमेशा पतिव्रता सती रहना चाहिए। पतिव्रता होने के कारण उसका जो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखे हैं, दैवी शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। यहां तक शास्त्र कहता है कि अगर पत्नी मान लो भक्ति ठीक से नहीं कर रही है, जप कीर्तन उससे ठीक से नहीं हो रहा है, श्रवण कीर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर वो पतिव्रता है तो उसको बहुत शक्ति मिलती है, वो देवता के समान है, वो देवी के समान पूजनीय होती है। तो स्त्रियों का प्रश्न होता है कि अगर हमारे पति सही नहीं है तो, अगर हमारे पति, जैसे प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक के तात्पर्य में बताया कि जिस प्रकार मनुष्य को ब्रह्मा नारद जैसे महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए, तो स्त्रियों का प्रश्न होता है कि अगर हमारे पति ऐसे नहीं है तो जो ब्रह्मा और नारद जैसे महामुनियों का अनुसरण नहीं कर रहे वो लोग बदमाश है, तो हमसे क्यों अपेक्षा की जा रही है, हाँ हम क्यों करें, हमारा पति चोर है, बदमाश है, मानता नहीं है, परेशान करता है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, हमें हमारा शोषण कर रहा है, तो हम क्यों पतिव्रता बने। तो शास्त्र का यही उत्तर है कि मंदोदरी का उदाहरण याद रखिए तब, क्योंकि मंदोदरी का पति रावण, हाँ अभी जैसे संसार में शुद्ध भक्त लोग प्रख्यात है ना, शुद्ध भक्त प्योर डिवोटी, वैसे रावण प्योर डिमन, हाँ शुद्ध राक्षस के रूप में प्रख्यात है, इससे बढ़कर कोई प्योर डिमन आज तक संसार में मिला नहीं है ना मिलने वाला है। हाँ हर स्त्री को जहां भी देखेगा कामवश ही देखता था, तब भी मंदोदरी ने कभी ये प्रश्न अपने न मन में उठाया है न कभी व्यक्त किया है कि मैं क्यों पतिव्रता बनूं जबकि मेरा पति तो विषयी है। हाँ जबकि मेरा पति तो अनेक नारियों के साथ रहते हुए भी जहां भी कहीं सुंदर स्त्री दिखी तो तुरंत ही उसकी दृष्टि जाती है। रावण को बार बार श्राप मिलता रहता था स्त्रियों से, फिर भी वो सुधरता नहीं था। एक बार की घटना थी जब वेदवती, जो भगवान बालाजी की पत्नी है पद्मावती, वही उसके पूर्व जन्म में वेदवती जब हिमालय पे तप कर रही थी तब भी रावण उसके पास गया था, उसकी सुंदरता देख के मोहित होके उससे आकर्षित हुआ और उससे संग करने गया था, जबरदस्ती रेप जो कहते हैं हम लोग, बलात्कार करने गया था, लेकिन वेदवती ने अपने तपोबल से अपने आप को जलाकर और जलाते जलाते उसको श्राप देती गई थी कि आज के बाद अगर कभी भी तूने किसी भी स्त्री से जबरदस्ती की तो तू जलकर राख हो जाएगा। तब से रावण के पास एक ही उपाय बचा था कि स्त्री को मना ले, जबरदस्ती ना करें, और वही कारण था कि सीता को वो मनाने का ही प्रयत्न पूरा जीवन करते रहा, जबरदस्ती नहीं कर सका था। लंका में उसको बिठाया था लेकिन जबरदस्ती कर नहीं पा रहा था, अन्यथा रावण ऐसा खतरनाक था कि वो जबरदस्ती भी सीता मैया, जो भले माया सीता थी हम लोग जानते हैं, लेकिन कर सकता था। तो इस रावण जैसे पतियों की स्त्रियां भी हमेशा पतिव्रता रही है। दूसरा उदाहरण शास्त्र में आता है तुलसी महारानी का, जिसका पति जलंधर भी एक राक्षसी था, उसने इतना तप किया था, इतना तप किया था कि उसको वरदान मिला था ब्रह्मा जी से कि जब तक तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है तब तक तुम अमर हो, तुम मर नहीं सकते, तुमको हराया नहीं जा सकता, तुमको मारा नहीं जा सकता, ऐसा उसको वरदान था। और इसी वरदान का दुरुपयोग करते करते आप सब जानते हैं कि जलंधर देवताओं को भी परेशान करता था, सारे देवताओं के साथ उसकी लड़ाई जब होती तो देवता लोग हार जाते सब मिलके और परेशान रहते और भगवान विष्णु के पास एक बार गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि अरे बचाइए हम लोग क्या कर सके। तो वो इतनी सतीव्रता थी तुलसी महारानी के स्वयं भगवान विष्णु को आना पड़ा था उसकी सतीव्रता जो व्रत था उसको भंग करने के लिए। भगवान है वो परे हैं नियमों के, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई नियम नहीं लग सकता। वो आए जलंधर का ही रूप लेकर तुलसी महारानी के पास और तुलसी महारानी ये समझ न पाई कि ये तो मेरे पति नहीं है, तो उसकी आगता स्वागता की केवल। एक पति का घर पे आने पे एक सती स्त्री का जो धर्म रहता है कैसे उसका आगता स्वागता करे, उसको जल प्रदान करे, उसको मीठे शब्द दे, उसको उसको शांति दे, उसको आश्वासन दे, आराम करने की सुविधा करे, प्रसाद वगैरह अर्पण करें, ना कि सीधारे मेरे लिए ये लेके आए वो लेके आए, ये किसका क्या हुआ उसका क्या हुआ, ऐसे शुरुआत नहीं करते हैं। तो वो आगता स्वागता कर रही थी, उसी क्षण उसकी उस क्षण के लिए वो पतिव्रता स्तर से नीचे गिरी। और उस क्षण के लिए जैसे ही पतिव्रता स्तर से वो नीचे गिरी जलंधर का शक्ति यहां खत्म हुआ। और जलंधर का शक्ति जैसे ही खत्म होता है सारे देवता ने मिलकर एक साथ हथियार छोड़े और जलंधर मारा जाता है। बाद में घटना हुई थी कि तुलसी महाराज समझ गई कि यह तो गलत हो गया, तो उसने श्राप दिया था भगवान विष्णु को भी, और शुद्ध भक्त का श्राप भगवान स्वीकार करते हैं। हालांकि भगवान को कभी श्राप नहीं दिया जा सकता, लेकिन भगवान भक्तों का श्राप स्वीकार करते हैं जो धर्म का पालन करते हैं, या पतिव्रता स्त्री है ना उसको इतना वो भगवान भी सम्मान करते हैं कि उनका श्राप भी वो कहते मैं स्वीकार कर लेता हूं, जैसे गांधारी का श्राप भगवान ने स्वीकार किया था। तुलसी महारानी ने बोला आप पत्थर जैसे हो, पत्थर जैसा निष्ठुर काम किया है आपने, इसीलिए आप पत्थर ही बनो। तो भगवान बोले ठीक है तथास्तु मैं पत्थर बनूंगा। उसी दिन से भगवान पत्थर के रूप में गंडकी रिवर में, नेपाल में जो गंडकी नदी है वहां शालिग्राम के रूप में रहते हैं। और साथ साथ में भगवान ने बोला तुमने भले मुझे श्राप दिया लेकिन मैं फिर भी संतुष्ट हूं तुम्हारे धर्म से, और तुमने मुझे जो ये सहायता की देवताओं की सहायता में, तो मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं कि तुम मेरी पत्नी के रूप में रहोगी, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं और शालिग्राम तुलसी का विवाह होगा और आज से मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूंगा। इसीलिए जो तुलसी जो प्लांट रहता है ना उसमें जो छोटे छोटे पत्थर रहते हैं ना कंकर, वो भी एक्चुअली शालिग्राम है। हाँ, वो भी ऑर्डिनरी पत्थर नहीं होते, शालिग्राम है, और वो दोनों हमेशा पति पत्नी के रूप में साथ में रहते हैं। यहां पे बताया कि भवान काम वसम, ये रावण काम के वश में ये जो बार बार ऐसे श्राप पाता था और गलत कार्य करता था, जो काम वश होता है ना वो अहंकारी बहुत बन जाता है धीरे धीरे धीरे, उसका अहंकार का जो कैपेसिटी रहता है वो बढ़ते ही जाता है बढ़ते ही जाता है, उसकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि जैसे कल केशव प्रभु बता रहे थे ना कि एक बच्चा अगर माचिस पकड़ता है और उससे कहा जाता है कि उसके माता पिता कहते हैं माचिस दो वो तुम्हारे लिए खतरनाक है अच्छी चीज नहीं है, लेकिन वो नहीं देता है ठीक, और हम लोग क्या उसी को पकड़ के रखते हैं ठीक, बच्चा उसी को पकड़ के रखता है ठीक, उसी तरह हम लोग अपने अनर्थ को पकड़ के रखते हैं। और भगवान भक्त साधु समाज बार बार कहता है इसे छोड़ो ये तुम्हारे लिए खतरनाक है ये मुझे दे दो, लेकिन हम लोग छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक उसी तरह रावण किसी भी परिस्थिति में अहंकार को छोड़ने तैयार नहीं था। एक भक्त ने इस प्रवचन के पहले ही मुझे प्रश्न पूछा कि जो महाभागवत था वो कामवश कैसे हुआ, तो यहां पे उत्तर इसी तात्पर्य में है, अनुवाद में भी है कि वो महाभागवत नहीं है, महाभाग का अर्थ भाग्यशाली है, तो वो उसका प्रथम उत्तर मिलता है। भाग्यशाली कामवश हो सकता है, महाभागवत नहीं हो सकता है। और दूसरा उनका प्रश्न था सीता जो महासती है और बाकी पंच सतियों का नाम के बारे में उन्होंने पूछा था, तो पंच सतियों में यहां पे सीता मंदोदरी द्रौपदी गांधारी और चौथा पांचवा नाम तो मुझे भी याद नहीं, किसी को पता है क्या? तारामती अनसुया सती सावित्री वाली ना, हाँ वही वो एक है पंच महासतियों में। और क्या प्रश्न था? और एक प्रश्न पूछा था प्रभु जी, तीन प्रश्न पूछे थे ना, एक महाभाग, एक पंचसती, और तीसरा क्या पूछा था? हाँ, तो महाभागवत तो है नहीं वो। हाँ, वो महाभाग जो लिखा है ना वो भाग्यशाली के लिए लिखा है। भाग्यशाली यानी फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट यानी जिसका भाग्य बहुत ज्यादा है उसको महाभाग कहते हैं। महाभागवत शब्द नहीं है श्लोक में, या प्रभुपाद जी ने ये नहीं बताया, महाभाग है यानी ग्रेटली फॉर्चुनेट, महाभाग्यवान, उसका परिवार से संबंध है वास्तव में, उसका परिवार महाभाग्यशाली था। और वो भी लंकेश्वर था, पूरे विश्व का राजा था, 33 करोड़ देवता जिसके सेवक थे, उस दृष्टि से वो महाभाग्यशाली था। लेकिन महाभाग्यशाली व्यक्ति भी कामवश तो हो सकता है। और कामवश, काम एक ऐसी चीज है, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, कल ही मैंने तात्पर्य में और एक कन्वर्सेशन में पढ़ा, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि माया का ये जो अस्त्र है काम, ये इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि अगर हम सावधान नहीं है ना, तो इस अस्त्र से स्वयं भगवान भी हमारी रक्षा नहीं करेंगे जब तक हम खुद हृदय से दृढ़ निश्चय नहीं है कि मुझे इससे बचना है। गेटिंग इट? ये शिला प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा है, जब तक जीव खुद हृदय से दृढ़ निश्चय 100% न करें और उसका 100% प्रयत्न उस निश्चय के लिए न रखें कि मुझे काम से मुक्त होना है, तब तक स्वयं भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते उस काम से, उस व्यक्ति का। ये इतना पावरफुल अस्त्र है जो स्वयं भगवान ने ही दिया है माया को, और माया इसका इस्तेमाल बड़े आसानी से करती है, उसको ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं है। माया देवी कहती है मुझे क्यों ज्यादा काम करने का, सब कुछ जो है वो, ये काम जो है वो करता है, काम देवता है वो कर रहा है, इसलिए माया नहीं करती है। तो इसलिए जब तक हम खुद डिटरमाइन, दृढ़ निश्चय न बने कि मुझे काम से मुक्ति चाहिए ही, मुझे करना ही है कुछ भी हो जाए, हाँ, और उसका जो प्रयत्न, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसका जो प्रयत्न होता है वो भी दृढ़ निश्चय के साथ 100% होगा, तो भगवान आके सहायता कृपा करेंगे और बचेगा, अन्यथा भगवान भी नहीं करेंगे। ये स्वयं प्रभुपाद जी कहते हैं। और यही देखा जाता है, रावण हो चाहे हिरण्यकशिपु हो, चाहे हमारे अंतर जो रावण और हिरण्यकशिपु बैठा है। कल केशव प्रभु कह रहे थे ना कि हम सुबह उठते हैं तो कभी भक्त उठता है, कभी असुर उठता है। हम सबके हृदय में भक्त भी है और असुर भी है। तो कभी हमको मन होता है कि चलो भाई एक बॉलीवुड का अच्छा सिनेमा देख लें, तो उस दिन असुर उठा, और फिर वो असुर जब सिनेमा देखेगा तो उसको काम के विचार आएंगे। और जिस दिन सुबह उठ के मन हुआ कि बहुत दिन हो गया, चलो राधा गिरधारी जाते हैं, श्रृंगार आरती दर्शन करेंगे, आज प्रवचन सुनेंगे भागवत, तो उस दिन भक्त उठता है। तो वो भक्त उठा तो फिर उसको वो काम से बचने की एक सुविधा मिलती है, एक मौका मिलता है, उस प्रयत्न को देखा जाता है। प्रयत्न तुम्हारे कितने से, बोलने से नहीं चलता है। प्रवचन कितने भी दो, बोलो कितना भी, मुझे काम से बचना है, काम से बचना है, लेकिन नहीं बचाया जाता। शिला प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने पूछा, एक उनके भक्त ने पूछा, एक सिगमंड फ्रॉइड करके एक फिलोसोफर हुआ है, उसके बारे में उसने बताया कि ये सारा विश्व जो है ना वो काम और काम की कीमत चुकाने का कार्य, काम वही है, कार्य को भी काम कहते हैं ना, काम करते हो ना, काम कार्य। तो सिगमंड क्या कहता है, सारा जगत जो है वो काम यानी लस्ट, इंद्रिय भोग, काम और उसकी कीमत चुकाने का काम कार्य यही है। तो एक शिष्य ने पूछा शिला प्रभुपाद जी को कि ये सिगमंड गलत नहीं बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है? शिला प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, सिगमंड ये बात में सही है, सारा जगत जो है वो क्या कर रहा है, काम और काम की कीमत चुकाने के लिए काम कार्य कर रहा है। और यही कारण है ये बड़े बड़े जो हजारों टावर्स बन रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियां बन रही है, एरोप्लेन बन रही है, हवाई जहाज बन रही है, कार्स बन रहे हैं, लोग दौड़धाम कर रहे हैं, अथक प्रयत्न कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है वो काम का परिणाम है। काम नहीं है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग कोई नहीं बनाएगा, किसी को 3 बेडरूम हॉल किचन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक रूम भी, सिंगल रूम भी चल जाएगा। ये काम न केवल अपने लिए 3 बेडरूम हॉल किचन खरीदवाता है, लेकिन दो चार दस और इन्वेस्टमेंट करवा के रुकवा देता है, बस यही काम। तुम टोटल चार व्यक्ति हो लेकिन 40 आदमियों का प्रयोजन करते हो, लेकिन अगर वही एक आदमी रहेगा तो वो चौथे हिस्सा या दसवें हिस्से का भी प्रयत्न नहीं करता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा वो सही है, काम वो और उसकी कीमत चुकाने का काम या कार्य, यही संसार है, भौतिक जगत है। इसमें न रावण बच सकता है और रावण वृत्ति वाले न हम लोग बच सकेंगे अगर वही प्रयत्न में हम रहे तो। तो रावण को भगवान के हाथ मरना था, कामवश व्यक्ति को भगवान के हाथ मरने का सौभाग्य कहां से मिला, यह भी एक प्रश्न होना चाहिए। जो कामवश है, जो लष्टी है, जिसने अनेक स्त्रियों से श्राप प्राप्त किया है, इसको भगवान के हाथों मरने का सौभाग्य कहां से मिला, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान के हाथ मरने मिला। हम भी तो ऐसे अनेक पाप करते हैं, अनेक जन्मों से करते आए हैं, करते होंगे पता नहीं, हाँ इस जीवन में कई कितने बॉलीवुड मूवीज देख लिए हैं या हॉलीवुड मूवीज देख लिए हैं, कई कितने मानसिक स्तर पे अनेक स्त्रियों का संग किया रहेगा, लेकिन हमें कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि भगवान आके हमको मारे, उसको कहां से मिला। इसके पीछे एक घटना थी, महाभाग शब्द का और वर्णन कर रहा हूं चांदगोपी प्रभु, उसके पीछे घटना एक बार थी कि जैसे आप लोग जानते हैं कि हनुमान आया, लंका जला के राख कर दिया, और फिर अंगद आया, चैलेंज किया भरी सभा में कि मेरे पैर को हिला के दिखाओ, कुछ नहीं हुआ, नहीं हिला सका, और रावण पराजित महसूस किया अपने ही राज्यसभा में, अपने ही मिनिस्टर्स के सामने उसका अपमान हो गया एक प्रकार का। फिर और एक बंदर आया था, शायद जामवन ही था, नहीं जामवन नहीं, सुग्रीव, जो उसके मुंह पे थूक के चला गया था, है ना, भरी राज्यसभा में उसके मुंह पे थूक कर चला गया था। तो रावण बड़ा एक्चुअली परेशान हो गया था, अहंकार उसका नष्ट हुआ था, उस समय उसको छेड़ा गया था कि अरे एक बंदर आके लंकापुरी जला गया, दूसरा आके चैलेंज करके गया मेरे पैर को हिला दो और मैं हिला नहीं सका, तीसरा मेरे मुंह पर थूक कर चला गया, तो क्या मैं ये अभी जो युद्ध होने जा रहा है रावण और बंदरों के साथ में, सॉरी भगवान श्री रामचंद्र और बंदरों के साथ में, क्या मैं ये युद्ध जीत पाऊंगा, उसके मन में एक प्रश्न होता है। तो क्योंकि अहंकारी था, शक्तिशाली था, तो मन से ही अपने आप को, बुद्धि से मनाता है मन को, नहीं नहीं मैं तो परम शक्तिशाली हूं, त्रिलोकेश्वर हूं, 33 करोड़ देवता जब मेरे सेवक है, मुझे क्या डरने की जरूरत है। तो वापस उसका मन कहता है नहीं नहीं किसी से सहायता ले लो, अच्छी बात होगी, बिना सहायता तुम नहीं जीत पाओगे। तो बुद्धि वापस कहती है किससे सहायता लूं मैं, देवताओं से तो सहायता लेने का कोई अर्थ नहीं है, ये मेरे सेवक है, मेरी सहायता के लिए वो लालायित है, किससे सहायता लूं, और असुरों में मेरे जैसा कोई श्रेष्ठ नहीं है, मैं असुरेश्वर हूं, अब मेरे जैसा श्रेष्ठ कोई असुर नहीं है, शायद इतिहास में बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ असुर हूं, असुर भी ज्यादातर यह बताने का प्रयत्न करता है कि मैं भक्त हूं, मैं देवता हूं, मैं अच्छा आदमी हूं, लेकिन बहुत कम ऐसे असुर है रावण और हिरण्यकश्यप जैसे, जो लोग इतने गर्व से रहते हैं और कहते हैं कि मैं असुरेश्वर हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ असुर हूं। तो वो कहता है कि मैं कौन से असुर से सहायता लूं, क्या मतलब है किसी से सहायता लेने का, ये सब तो छोटे मोटे लोग हैं मेरे सामने। तो उसने सोचा कि मेरे जो पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज जो असुर परिवार से ही है, सॉरी बलि महाराज, मैं उनसे सहायता मांगता हूं, क्योंकि वो मेरे पूर्वज हैं तो मुझे सहायता करेंगे, क्योंकि वो असुर खानदान से है तो स्वाभाविक उनकी जो फीलिंग्स है वो मेरे और ही रहेगी, और परम शक्तिशाली है, सुतल लोक में रहते हैं, मैं वहां जाके उनसे सहायता मांगता हूं कि मुझे थोड़ी सहायता कीजिए, मैं भी तैयार रहूं अपनी ओर से। तो रावण लंका से निकला अपना गदा और तलवार, हमेशा ये दोनों लेकर ही निकलता, कहीं भी निकलता, उसका मूड हमेशा रहता कि कहीं पे कोई राजा देवता कुछ मिले तो उसको दबोच के हरा के अपने वश में कर लूं और उसका राज मैं ले लूं, उसका हमेशा यही प्रयत्न, केवल एक बार कार्तवीर्य अर्जुन के सामने भिड़ने गया था, पकड़ के उसको रावण ने, रावण को जेल में डाल दिया था कार्तवीर्य अर्जुन ने। वहां से बड़ी मुसीबत से वो निकल पाया था, वो निकल ही नहीं पा रहा था वहां से। तो वो निकला और सीधे सूतल लोक पहुंचा। अब सूतल लोक में क्या है, भगवान वामन देव के रूप में स्वयं बलि महाराज का जो ये जो सूतल लोक है, जो राज है, उसकी रक्षा करते हैं। पता है ना, वामन देव की कथा में उन्होंने वचन दिया था कि मैं रक्षा करूंगा आपकी। तो वामन देव उधर थे और रावण ने देखा कि ये रक्षा कर रहे हैं, कौन है उसको ठीक से पता नहीं है, थोड़ा अंदाजा था कि ये विष्णु ही है जो ड्वार्फ, हाँ, एक बटुक ब्राह्मण या वामन देव के रूप में खड़े हैं। तो बोले ये विष्णु की क्या, ठीक है अभी वो तो, जब देवता मेरे बस में है तो ये देवताओं का राजा भी वही है ना। तो वो घुसने गया, तो जब घुसने को जाता है ना, तभी ठीक उसी समय वामन देव ने अपनी गदा ऐसे बीच में रोक दी, बोले तुम नहीं जा सकते। तो रावण इस समय लड़ाई के मूड में नहीं था, क्योंकि मदद मांगने जाना है ना, मदद मांगने जिसके पास जाना है उसी के घर के पास अगर उसी के आदमी से लड़ाई बड़ाई करे तो मदद कहां मिलेगी, कोई मतलब ही नहीं है। तो रावण थोड़ा पीछे चला गया और फिर सोचने लगा कि अंदर जाना है तो इतना सूक्ष्म छोटा बन जाता हूं कि ये देख ही नहीं पाएगा और मैं घुस जाता हूं। तो एकदम उसके पास तो अलग अलग सिद्धियां थी, एकदम छोटा, हाँ, एकदम कहने अमीबा जितना, एक सेल जितना, एकदम छोटा सा बन के चुपके से घुसने गया सूतल लोक में। तो वामन देव ने उसके ऊपर पैर ही रख दिया। जब पैर रख दिया तो वो बेचारा एकदम तड़पने लगा, रहे इतना भारी पैर और वो छोटा रूप लेके उस समय बैठा था, उसकी सिद्धि से वो बड़ा भी उस समय नहीं हो पा रहा था। इतना वामन देव ने उसको ऐसा दबाया, अरे वो तो एकदम मदद मांग रहा है, अरे त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षा करो, सॉरी सॉरी गलती हो गई, मुझे माफ करो। बस शिला प्रभुपाद जी कहते कि उस क्षण उसका ये महाभाग फलित हुआ, क्योंकि भगवान रामचंद्र के, भगवान वामन देव के चरण कमल उसके शरीर पे पड़े, इसीलिए उसको वो महाभाग बताया गया और उसको वो भाग्य मिला जिस भाग्य से वो भगवान रामचंद्र के हाथों मारा जाता, क्योंकि अब तक उसका वो भाग नहीं था कि वो भगवान के हाथों मारा जाए। उसका कोई कार्य ऐसा नहीं था, हाँ, कि उसको इतना शक्ति या भाग दे के वो भगवान के हाथ मारा जाए, ये संभव नहीं था। अब वामन देव ने एक्चुअली कृपा की, उनको पता था कि आगे चल के इसको मरना है, लेकिन ये कैसे मरेगा, इसका तो कोई भाग्य ही नहीं है, रामचंद्र के हाथ कैसे मर सकता है, इसलिए जानबूझ के वामन देव ने उसको कृपा दी, उसको दबाया पैर के नीचे। और फिर जब उसने माफी मांगा, मदद के मूड में था, तो बोले ठीक है जाओ। लेकिन अहंकारी पुरुष तो हमेशा अहंकारी रहते हैं, काफी खतरनाक होते हैं। कभी कभी हम लोग मटीरियल वर्ल्ड में भी देखते हैं अहंकारी पुरुष सब जगह ऐसा अहंकार की बातें करेगा, और कहीं कभी उसका बॉस जो रहेगा, प्रेसिडेंट या मैनेजर या डायरेक्टर, मटेरियल वर्ल्ड की कंपनी में डायरेक्टर वगैरह, उसको बंद केबिन में बुलाएगा और डांटेगा और उसको, उसके अहंकार को तोड़ेगा, तो अंदर तो एकदम माफी मांगता है, रोता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब बाहर आने का है तब उसका अहंकार वापस आ जाता है, वो अपना सब हाल बेहाल जो रहता है वो ठीक करके बाहर आके एकदम अच्छी तरह से सबके सामने पेश होएगा, जैसे उसका वो कुछ माफी वाफी मांगा नहीं है, वो लड़के आया है डायरेक्टर या प्रेसिडेंट से, बता दिया उसको मैंने, बहुत बड़बड़ कर रहा था अंदर, मैंने जवाब दे दिया करके, वो हमने बहुत बार देखा, ये सब होता है लोगों के साथ में, है ना। अहंकारी तो अहंकारी रहता है, और वो भी तो रावण है, कोई छोटा मोटा अहंकार तो है नहीं। रावण गया अंदर बलि महाराज के पास, बलि महाराज ने बोला अरे रावण तुम यहां सूतल लोक में अंदर कैसे प्रवेश किए। तो जो हुआ वो नहीं कहता है, अरे मुझे कौन रोक सकता है, मैं त्रिलोकेश्वर हूं, हाँ, त्रिलोक में ऐसी कोई जगह नहीं जो मुझे नहीं प्रवेश दे, मैं आराम से आ सकता हूं। तो बोले द्वार पे वामन देव खड़े थे, रोका नहीं क्या, वो छोटा बटुक ब्राह्मण मुझे कैसे रोक सकता है, ऐसी बात कर रहा है वो। एक एक देखिए थोड़े समय में कितना फर्क है, बोले वो छोटा बटुक ब्राह्मण मुझे कैसे रोक सकता है। बलि महाराज महाभागवत है, उनको सब पता चलता है, बोले क्यों रोक नहीं सकते, ऐसा बोलते हो, तुमको दबाया था ना पैर के नीचे और तू माफी मांग के तो अंदर आया, बोले तुम्हें कैसे पता, वो बोले अरे तुम्हें कैसे पता चल गया? तो बोले तुमने आके ही तो कहा कि आप मेरे पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज हैं, मुझे आपसे मदद चाहिए। तो मैं अगर तुम्हारा पूर्वज का पूर्वज हूं तो क्या मुझे इतना पता नहीं चलेगा? तुम्हारे से तो ज्यादा ही मुझे पता चलता होगा ना। तो कहता है अच्छा ठीक है, जो हुआ सो, आप जानते हैं सब कुछ, तो फिर मुझे थोड़ी मदद करिए। तो बोले क्या, मैं नहीं जानता हूं, किस चीज की मदद चाहिए, क्या हुआ? तो बोलते थोड़े से बंदर को लेकर एक वो दशरथ का बेटा है ना राम, वो एक मानव है कोई, वो मेरे लंका के तट पर आए समुद्र पार करके, मुझसे लड़ाई करना चाहते हैं। तो मैं सोचा कि हम लोग तो असुर परिवार के एक साथ में, हमारा वंशज एक ही है, तो साथ में मिलकर लड़ें। एक मानव अगर असुरों पे आक्रमण करे तो बड़े शर्म की बात है, और वो भी कुछ बंदरों के साथ में। तो मैं चाहता हूं कि आप भी मुझे इस युद्ध में सहायता करें। तो बलि महाराज ने आंख बंद करके देखा कि ये कौन है। ऐसा जब देखा तो तुरंत उनको तो पता चल गया क्या है पूरी हकीकत। तो बोले वो मानव दशरथ का बेटा जो है ना, वो वास्तव में मानव तुमको लगता है, लेकिन वो तो स्वयं भगवान विष्णु है। और विष्णु से तू चैलेंज करेगा क्या? और विष्णु की पत्नी, रामचंद्र की पत्नी सीता मैया को तू उठा के क्यों लेके आया? दे देना वापस, क्या प्रॉब्लम है? तो रावण बहुत गुस्सा हो गया, बोले नहीं, ये नहीं हो सकता है। मैं यहां तुमसे ये सुनने के लिए नहीं आया हूं कि मैं वो वापस करूं, मैं मदद मांगने के लिए आया हूं। मदद करोगे कि नहीं ये बताओ। बोले मदद, मदद तुमको क्या चाहिए बताओ, मैं तुमको क्या मदद करूं? बोले मुझे मदद करो कि युद्ध में मुझे लड़ना है तो आप मेरे साथ आओ, और साथ में ये जो मेरी लंका जो सोने की थी जल गई है पूरी, इसको पुनर्स्थापित सोने से करके दो। तो बोले वो तो मैं कर सकता हूं, सोने की लंका तुम्हारी जल गई ना, मैं तुमको उतना सोना दे दूंगा, तुम जाओ लंका पुनर्स्थापित करो, और एक काम करो पुनर्स्थापित अच्छी सी लंका करके सीता मैया को छोड़ दो, और बाकी तो तुम्हारे पास अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, वापस तुम भोग विलास करो और छोड़ो ये सब झंझट। एक स्त्री के लिए क्यों इतना झंझट और बर्बादी स्वीकार कर रहे हो? तो बोले वो सब नहीं हो सकता, पहला बात जो सोना देने की बात कर रहे हैं, पहले वो दे दीजिए। बोले ठीक है चलो मेरे साथ। तो उसको राजमहल से बाहर लाए रावण को बलि महाराज। अब बाहर आके एक अति सुंदर, उसके गार्डन में इतना सुंदर एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ था, और उस पहाड़ पे जैसे पहाड़ों पे वृक्ष निकलते हैं ना, वैसे इस सुवर्ण पहाड़ पे हर जगह में अच्छे अच्छे सुंदर मोतियों का वृक्ष निकलते थे, डायमंड्स लटक रहे थे, और इतने कीमती डायमंड्स थे ना कि ऐसे कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा आज के युग में तो मिलेगा भी नहीं, इतने सुंदर सुंदर डायमंड्स थे चारों ओर ऐसे, और मोती सुवर्ण अलंकार जड़ित ये पहाड़ था सोने का। वर्णन है कि 32 योजन लंबा और चौड़ा था, कुछ काफी बड़ा सुंदर गोल्ड, प्योर गोल्ड। तो बलि महाराज कहते कि ये जो पूरा जो सोने का पहाड़ है, क्योंकि तुम मेरे वंशज के वंशज के वंशज के वंशज में आते हो और तुम मुझसे मदद के लिए आए हो, तुम्हारी लंका के लिए मैं ये तुमको प्रदान करता हूं, तुम ले लो। रावण देखते ही आश्चर्यचकित हो गया, इतना सारा सोना, ये तो ऐसी इस पहाड़ से तो मेरी 50 लंका बन जाएगी। और सोच रहे हैं बाढ़ में गया वो सब लंका, और उधर मैं जाता ही नहीं हूं, कुछ इसको लेके कहीं और चला जाता हूं और आनंद करूंगा, हाँ वो भूल जाता हूं, वो छोड़ दो, वो सेट ही पूरा एक सेट छोड़ दो, नया एक सेट बना देता हूं। और बलि महाराज समझ गए कि ये मन में क्या सोच रहा है, बोले अच्छा है अगर ऐसा कर दे तो सीता मैया छूट जाएगी। लेकिन फिर वापस अहंकार नहीं छोड़ने देता है, वो एक समय तो सोचा काम बस सोचा कि मैं ये छोड़ देता हूं, लेकिन फिर अहंकार का क्या हुआ, अरे लोग कहेंगे रावण भाग गया, रामचंद्र के आने पर रावण भाग गया ये कहेंगे, नहीं मैं उसको भी पकड़ूंगा, वहां वो लंका भी नहीं छोड़ूंगा। तो बलि महाराज को कहता दे दो मुझे, तो बोले ले लो ना, मैंने कहा मना किया, मैं केवल एक ही शर्त रखता हूं कि इस पहाड़ को तुम खुद ही उठा के लेके जाओगे, मैं कोई तुम्हें उधर मदद करने के लिए ये पहाड़ उठा के नहीं चलने वाला हूं, ना मेरे सैनिक लोग आएंगे, तुम उठा के लेके जाओ। अहंकारी पुरुष रावण कहता, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने एक बार कैलाश को उठाया था। वो नहीं सोचता या बताता है कि शिवजी ने केवल अंगूठे से उस कैलाश को दबा के मेरा हालत खराब किया था, वो नहीं सोच रहा है। बोले मैंने एक बार कैलाश को उठाया था, मैंने बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ा है, इस पहाड़ को उठाना तो आसान है, मैं उठा लेता हूं। तो रावण उठाने के लिए जाता है, अहंकारी पुरुष पहले लेफ्ट हैंड से उठाने जाता है, लेफ्ट हैंड से उठाने को गया, उठाने की बात तो दूर रही, पहाड़ हिलता भी नहीं है, एक एमएम एक छोटा सा कण जितना भी हिला नहीं। जब लेफ्ट हैंड से नहीं हिला तो राइट हैंड से ट्राई किया, ज्यादा शक्तिशाली है, उससे ट्राई किया तो भी नहीं हिला, तो समझ गया कि ये तो बहुत बड़ा सोना है, बहुत अच्छी बात है। पूरा शक्ति लगा के दो हाथ से प्रयत्न कर रहा है, बहुत प्रयत्न किया लेकिन हिल ही नहीं रहा है। और जब हिल नहीं रहा है तो सोच रहा है कि ये क्या है, क्यों नहीं हिल रहा है, मैं शक्तिशाली, त्रिलोकेश्वर, मेरे से नहीं हिल रहा है। बलि महाराज की ओर देखता है, अरे क्या है ये? तो बोले क्या है तुमको थोड़ा दिखाता हूं, छोड़ो जरा मेरे साथ पीछे आओ। तो वो लोग दोनों पहाड़ से काफी दूर गए। अब फिर बलि महाराज कहते हैं रावण को कि ध्यान से देखो ये क्या है। तो रावण ने ध्यान से देखा, दूर से देखने से थोड़ा समझ में आता है, नजीक से तो एकदम दीवार के जैसे चिपके हुए, कैसे पता चलेगा क्या है। दूर से थोड़ा देखा तो बलि रावण कहता, अरे ये तो रिंग है, ये राउंड है, हाँ ये तो राउंड है, ये रिंग है। और फिर ध्यान से देख के बोलता, अरे ये तो कान में पहनने का रिंग है, और कान में पहनने का जो रिंग है वो चारों ओर से सुवर्ण डायमंड, हाँ जो हीरा रहता ना, हीरा जड़ित है, उसको हीरे लगे हुए, वही मुझे लग रहा था कि ये वृक्ष है हीरों के, इतने सारे जो वृक्ष हैं उस पे हीरे निकल रहे हैं, लेकिन ये तो एक्चुअली डायमंड, जो रिंग डायमंड की रिंग है, सोने की रिंग ऊपर डायमंड है, हीरा जड़ित। तो बोले ये तो रिंग है, ये तो इतना बड़ा रिंग मैंने तो पहली बार देखा। बलि महाराज कहते हैं, ये जो तुम पहली बार देख रहे हो, हाँ जो तुमको अभी समझ में आ रहा है, वास्तव में ये रिंग और किसी की नहीं, तुम्हारी खुद की, और तुम इसको कान में लेके पहनते थे। बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, अरे बाप रे, इसी रिंग को मैं कान में लेके पहनता था, कब की बात कर रहे हो, मैंने तो इसको देखा भी नहीं है। पूर्व जन्म में जब तुम हिरण्यकश्यपु थे तब तुम इतने शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली थे कि ये रिंग तुम कान में पहन के घूमते थे, जिस रिंग को इस जन्म में तुम हाथ से हिला नहीं सक रहे हो, पूरी शक्ति लगा के जिस रिंग को हिलाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, उस जन्म में तुम इसको अच्छी तरह से कान में लटका के चलते फिरते और युद्ध भी करते थे। तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, बाप रे बाप, मैं उतना शक्तिशाली था और अब इतना कम शक्तिशाली हूं। तो बलि महाराज देखा कि शायद कुछ असर होएगा, बोले अब सोचो, उस समय तो इतना शक्तिशाली था, तो यही रामचंद्र उस समय नरसिंह देव का रूप लेकर आए थे और अपने नखून से तुझे मार डाला था, कोई हथियार बथियार नहीं, केवल नखून से तुझे फाड़ के मार डाला था, तू इतना शक्तिशाली, इससे हजारों गुना, और वही व्यक्ति उस समय तुम्हें नखून से मार डाले थे, और इस समय तेरा शक्ति तो उसको हिला नहीं सकता है, और वही व्यक्ति इस समय धनुष बाण लेके तेरे सामने खड़ा रहेगा। नखून की बात छोड़ दो, अपना धनुष उठा के आने वाले हैं, वो भी कौन सा धनुष, जिसको उठाने के लिए 400 आदमी लगते थे, जिस धनुष को उठाने 400 आदमी मिलकर नहीं उठा पाते थे, उस धनुष को लेके वही मानव जिसे तुम सामान्य मानव कहते हैं, वो एक्चुअली स्वयं रामचंद्र वही नरसिंह देव है जो तुम्हारे सामने आके युद्ध करेंगे। लेकिन काम वश जीव जो होता है वो अहंकार को ही प्राधान्य प्रायोरिटी देता है, वो कभी भी किसी की बात नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। इसीलिए इतिहास ने देखा है और आगे भी देखते आया है, देखते रहेगा कि काम वश हर जीव इस भौतिक जगत में पराजित ही पराजित होते जाता है। करोड़ों सालों से काम ने हरेक को पराजित किया है, हिरण्यकशिपु को पराजित किया, रावण को पराजित किया, और हम छोटे मोटे मच्छरों की तो बात ही क्या करना, हम अपने जीवन में जितना 30, 35, 40, 45, 50 साल देखे, हम सब पराजितता का ही अनुभव कर रहे हैं। और उस पराजितता का पिछला अगर एकदम एंड में कारण ढूंढे ना, तो रूट पे अगर कुछ कारण है तो वो है केवल काम। काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवे महासनो महापापमा। महापापी, महासनो, महावैरी, खतरनाक चीज अगर कुछ है तो काम। असंभव है इसको पराजित करना। काम करो और फिर दिन रात काम करते रहो गधे की तरह। सिंपल सूत्र प्रभुपाद जी ने बताया था, टू वर्क लाइक एन एस, टू एंजॉय लाइक अ डॉग। कुत्ते की तरह काम करो, गधे की तरह काम करो, 24 घंटा कार्य करो। ये हम सब लोगों की स्थिति होती है। न रावण सुधर सका, न हिरण्यकशिपु, और न आने वाले कोटि कोटि जीवात्मा, पूरा इतिहास करोड़ों साल का काम के वश। कल चर्चा हो रही थी ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम, ये आश्रम वो आश्रम, अनेक चर्चा हो रही थी। एक्चुअली कोई आश्रम से क्या लेना देना, कौन से आश्रम में है, क्या कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस, चेतना से लेना देना है। अगर शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त कौन है, भक्त वही है जो काम से मुक्त है, बस सिंपल। वो ब्रह्मचारी है कि गृहस्थ है कि सन्यासी है कि वानप्रस्थी है, कोई लेना देना नहीं है। दैवी व्यक्ति या भक्त वही है हु इज फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर। सिंपल डेफिनेशन प्रभुपाद कहते हैं। अगर आप काम से मुक्त हैं, आप सन्यासी है, भले ना सफेद कपड़े में हो और 3-4 बच्चों को लेकर घूमते हो, कोई बात नहीं। अगर काम से मुक्त नहीं है तो वो लाल कपड़े वाले सन्यासी, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने चैलेंज किया था ना अपने, उनके गुरु महाराज जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का देह के ऊपर जब सब लोग लड़ाई कर रहे थे कि इसका कब्जा हम लोग करेंगे, हम लोग करेंगे, हम लोग करेंगे, सब सन्यासी लोग आए थे और लड़ाई करने के लिए, अरे ये हमारे गुरु है, हम इसको हमारे यहां लेके जाएंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने चैलेंज किया कि आप इतने सारे ब्रह्मचारी सन्यासी और ये सब लोग जो क्लेम कर रहे हो सब लोग मिलके कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, गुरु है, मैं इसको लेके जाऊंगा, ये सब धन की इच्छा से कर रहे थे। बोले आप में से इनको छूने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जिसने अपने जीवन में कभी काम ना किया हो, इच्छा ना की और काम से मुक्त हो। तो सब लोग पीछे। बोले चलो पूरे जीवन की बात छोड़ दो, केवल एक महीना, 10 दिन, एक दिन, एक घंटा, अगर एक घंटा भी अगर तुमने काम का विचार नहीं किया तो तुम लेके जा सकते हो। कोई नहीं था, कोई नहीं लेके जा सका, इम्पॉसिबल। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज लेके गए, है ना। तो जो व्यक्ति कौन से आश्रम में, एक्चुअली उससे कोई लेना देना नहीं है। स्थाने स्थिता, जिस स्थान में हो, और ये व्यक्तिगत है, ये सामाजिक या जनरल लॉ नहीं है। यू कैन नॉट जनरलाइज इट कि ये नियम है कि यही वर्ण अच्छा है या यही आश्रम है। हर व्यक्ति का उसकी चेतना, उसकी स्थिति पे आधार पे उसके लिए एक सही आश्रम है, उसको प्रगति के लिए। अब मान लो कोई व्यक्ति है जो ब्रह्मचारी रह के ही अगर भगवत भक्ति अच्छी सी कर पा रहा है और उसको किसी सांसारिक दुविधा झंझट ये झमेले में नहीं पड़ना है, और वो अपने आप को अगर काम से रोक पा रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है, डिजायर रहेगी लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा है, तो उसके लिए वो आश्रम श्रेष्ठ है, ब्रह्मचारी आश्रम। वो झमेले में ना पड़े, अपना भक्ति भजन करते हुए प्रगति करे और भगवत धाम जाए। क्यों? क्योंकि उसमें एक गुण है कि वो अपने आप को काम के कार्य से बचा सक रहा है, उसका विशेष गुण है वो, बेस्ट क्वालिटी। हाँ, अगर वो गुण है तो उसके लिए वो आश्रम ठीक है। लेकिन वहां पे ही अगर कोई ब्रह्मचारी जो अपने आप को काम से बचा ही नहीं पा रहा है, और उसकी दृष्टि अगर स्त्रियों के पास जा रही है, लड़कियों के पास जा रही है, धन के बारे में सोच रही है, और भक्ति में रुकावट है उसके लिए, बाधा बन रही है, तो अच्छा है उसके लिए कि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। व्यभिचारी बनने से अच्छा रहेगा कि वो गृहस्थ आश्रम का एक अनुभव ले ले, एक सीमित दायरे में अपनी काम तृप्ति करके भक्ति में जो सिद्धांतों पे आधारित है ब्रह्म गृहस्थ आश्रम के सिद्धांत, उसका पालन करते हुए अच्छा सा भक्ति करे, उस व्यक्ति के लिए गृहस्थ आश्रम उस समय श्रेष्ठ है। और जब वो परेशान हो जाएगा, हा? वाइफ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट का कंसेप्ट रख रख के, हा? भोग करते 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 जब परेशान होके अगर जब वो कहेगा कि वाइफ वर इज इन्वाइटेड फॉर एवर, तब उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि अब तुम ये आश्रम छोड़ के वानप्रस्थ के लिए तैयार हो जाओ और तुम्हारे लिए वानप्रस्थ श्रेष्ठ है उसी व्यक्ति के लिए। और वानप्रस्थ अगर वो सही ढंग से 5-10 साल कर पा रहा है, अच्छी तरह से उसका चल रहा है, तो वो व्यक्ति सन्यास के लिए ठीक हो सकता है, उसके लिए उस समय सन्यास आश्रम ठीक रहेगा। शिला प्रभुपाद जी के मिशन में इतना अच्छा है ना सुविधा, किसी भी आश्रम में रहो कुछ भी करो, केवल शिला प्रभुपाद जी का अगर जीवन में अच्छा सेवा किया है, हाँ, तो शिला प्रभुपाद जी उस सेवा को कभी नहीं भूलेंगे और जीवन के अंत में निश्चय आपको लेने के लिए आएंगे, निश्चय आएंगे 100%। ये शंका नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि देखा गया है कि कुछ व्यक्ति सन्यासी बने, बहुत अच्छा सेवा किया, बाद में देखो माया सबको परास्त करती है, परेशान हुए, गृहस्थ बने, भोग विलास किया, लेकिन मृत्यु के समय प्रभुपाद जी आके उसको लेके गए। ऐसा इतिहास है अपने इस्कॉन का। एक पृथु महाराज थे, पृथु पुत्र महाराज करके इस्कॉन के एक सन्यासी हुए, फ्रांस से, फ्रेंच। वो 1976 में प्रभुपाद जी से दीक्षा लेके, सॉरी 1967 में दीक्षा लेके बहुत अच्छी सेवा की, यहां तक कि धीरे 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 उनका प्रगति होते होते उनको सन्यास भी मिला, सन्यासी होके भी बहुत प्रचार और सेवा किया। शिला प्रभुपाद जी चले गए तो वो भी इस्कॉन में नहीं रहे और इस्कॉन छोड़ दिया। और जैसे ही कोई, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, इस्कॉन और भक्तों का संग छोड़ा, माया ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण ऐसा किया कि उन्होंने सन्यास ड्रेस छोड़ दिया, व्यभिचारी बन गए, अल्कोहलिक, ड्रग्स, जो फॉरेनर थे ना, पुरानी आदतें वापस आ गई, सब कुछ करने लगे। लेकिन जब मृत्यु का समय आया ना, तब भक्त को, अभी भक्त का संपर्क ही नहीं है ना, भक्त को पता ही नहीं है कि वो व्यक्ति किधर है, किसी को नहीं मालूम था, और ये व्यक्ति भी भक्तों के संग में नहीं था। हॉस्पिटल में एडमिट हुए, एड्स हुआ था, खतरनाक बीमारी, मृत्यु, मृत्यु सामने था। वहां के जो एक्सपर्ट फ्रांस के डॉक्टर थे ना, उनको उधर चारों ओर देख के, चेकिंग बेकिंग करके, जो भी उनका रेडिएशन थेरापी वगैरह सब कुछ करके, आपस में 3-4 डॉक्टर लोग उधर ही खड़े खड़े बात करने लगे कि ये शायद एकाध घंटा जिएगा या शायद आधा घंटा जिएगा कि 5 मिनट या 5 दिन, मुश्किल है, कितना जिएगा पता नहीं। नो डिवोटीज एट ऑल, कोई भक्त नहीं था उधर, कोई नहीं, कोई कीर्तन का संभावना नहीं। और ये भी इतने दूर आ चुके थे इस्कॉन भक्त और सब कुछ से, कि अब उनको इस समय कुछ करना भी संभव नहीं था। ये ऐसी बातचीत चल रही थी, इतने में वो जो एकदम बेहाल अवस्था में, एकदम पेनफुल सिचुएशन, कैंसर में इतना पेन होता है ना, अनबेरेबल पेन, खतरनाक पेन होता है, वो बेहाल अवस्था में पड़े थे, पेनफुल सिचुएशन में अचानक खड़े हुए और उनके चेहरे पे तेज हुआ, आंखें खोल के दरवाजे की ओर देख के बोलते, श्रीला प्रभुपाद आप आए मुझे लेने के लिए। और इतना बोल के वो दिव्य स्थिति में गिरे और मर गए। डॉक्टर्स लोग को आश्चर्य हुआ कि इसको हुआ क्या, कुछ हम लोग ने किया नहीं, वो लोग डिस्कशन कर रहे थे कि कब मर सकता, कब मरेगा, 2-4 घंटे बचे कि क्या है। और ये अचानक इतना तेजस्वी तेज के साथ खड़े होके, और किसका नाम लिया, श्रीला प्रभुपाद कौन है, बिकॉज उन लोगों को पता नहीं है कौन है श्रीला प्रभुपाद, आप आए मुझे लेने के लिए करके, और ये मर गए। बाद में जब भक्तों को पता चला, भक्त लोग आए कि हमारे एक्स सन्यासी ये हुए, तो डॉक्टरों को पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि पहले ये बताइए श्रीला प्रभुपाद जी कौन है जो इनको लेने के लिए आए, ऐसा ये बोले थे, हमको तो कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन ये बोले श्रीला प्रभुपाद जी आप मुझे लेने के लिए आए। डॉक्टरों ने बताया जो मटेरियलिस्टिक थे, जिनको पता नहीं है, कुछ पता नहीं, उन्होंने अपना वर्णन दिया, 100% गारंटेड प्रूफ हो गया, कोई बनी बनाई कथा भक्त लोग शायद बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, ये जो जानते नहीं थे वो लोग ने बताया, तो गारंटेड है। इस्कॉन संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई भी आश्रम का हो, सेवा अगर दृढ़ निश्चयता से करता है, शिला प्रभुपाद जी हमें अंत में लेने के लिए आएंगे, गारंटी, डोंट वरी। आश्रम की चिंता मत करिए, चिंता केवल करना है तो यही चिंता करना है कि मेरा भक्ति कितना प्रगति हो रहा है और उसके लिए मेरी कौन सी स्थिति मेरे लिए अच्छी है। ब्रह्मचारी स्थिति अच्छी है, वहीं रह के भजन करिए, नहीं लग रहा है तो गुरु के मार्गदर्शन में गृहस्थ बनिए, हाँ जब परेशान हो गए तो गुरु के मार्गदर्शन में वानप्रस्थ लीजिए, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में वानप्रस्थ लीजिए। कभी कभार क्या है, भाव में आकर दो चार साल की गृहस्थी देख के, हाँ दो चार बच्चों से परेशान होके वो एकदम एकदम मूड में आ जाता है कि सब कुछ छोड़ के बस अभी मुझे केवल यही करना है, घर बार बेच देता है और क्या क्या करता है और सब स्कूल से बच्चों को उठा लेता है और फिर बाद में एकदम बहुत बड़ा जैसे वानप्रस्थी या सन्यासी बन गया, ऐसा छह महीना घूमता फिरता है और कोई उसको कुछ पूछता है तो ऐसा बड़ा बातें करता है, अरे मैंने सब कुछ छोड़ दिया, रिनाउंस रिनाउंस रिनाउंस, लेकिन पांच छह महीने के बाद वापस आता है और घर ढूंढता है कहां मिलेगा कहां मिलेगा और कुछ होता नहीं है, बेचारे से परेशान हो जाता है। सेक्ट से अपसेट एंड फॉर एवर अपसेट, एटलीस्ट कुछ एक सेट आश्रम था वहां पे ठीक चल रहा था, वहां पे प्रगति चल रही थी, तो सेंटिमेंटल नहीं बनना चाहिए। इसीलिए हर व्यक्ति को एक्चुअली चाहिए कि मेजर मेजर डिसीजन स्टेप्स लेने के लिए गुरु से मार्गदर्शन लेके ही करें। छोटा मोटा काम के लिए हर चीज में गुरु को परेशान करने नहीं दौड़ना चाहिए, गुरु जी आज मैं क्या खाऊं पेट दुख रहा है, ब्रिंजल खाऊं या कैबेज खाऊं, ऐसा नहीं। लेकिन जब मेजर डिसीजन लेना है तो गुरु से पूछ कर करना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी को एक बार एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद जी दीक्षा का मतलब क्या है, दीक्षा लूं तो क्या अर्थ है उसका, एक ही वाक्य में उत्तर दिया प्रभुपाद जी ने, दीक्षा का अर्थ है अगर तुम गुरु को भगवान के रूप में स्वीकार करते हो और भगवान जो चाहते हो तुम करोगे, उसके लिए तुम लायक हो तो दीक्षा लो अन्यथा मत लो, सिंपल। अगर आपके गुरु को आप भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं और गुरु जो कहेंगे वो ही करोगे, भगवान जो कहेंगे वो करना है, भगवान जो कहेंगे वो नहीं करना है तो हम रावण बनेंगे, कोई मतलब भी नहीं है। सो एकदम क्लियर कंसेप्ट है, परफेक्ट। शिला प्रभुपाद जी ने एकदम क्लियर फॉर्मूला दिया है। एक बार जयपता का महाराज बता रहे थे कि शिला प्रभुपाद जी एक जगह पे प्रवचन दे रहे थे और ऊंचे उस समय व्यास आसन बहुत ऊंचा बनाया था, तो एकदम ऊपर व्यास आसन पे प्रभुपाद जी बैठे प्रवचन दे रहे थे और सब सामने शिष्य और अनेक सन्यासी बैठे थे और प्रवचन में शिला प्रभुपाद जी ये स्ट्रेस कर रहे थे कि हर जीव को चाहिए किसी भी आश्रम में किसी भी स्थिति में 100% कृष्ण भावना भावित बने। जो कृष्ण भावना भावित है 100% वही भगवत धाम जा सकता है। तो जयपता का महाराज बता रहे थे कि हम लोग सब दुखी हो गए, 100% कृष्ण भावना भावित हम बन नहीं पा रहे, हमारे लिए संभव नहीं है। तो प्रवचन पूरा यही 100% का कंडीशन के साथ पूरा करके शिला प्रभुपाद जी व्यास आसन से खड़े हुए और नीचे उतरने गए और उतरते उतरते बोला ठीक है तुम 90% बनोगे तो भी मैं तुमको संभाल लूंगा, चिंता मत करो। देख लिया शिष्यों को कि ये लोग सब चिंतित दिख रहे, लेकिन 90% भी मीन 90% भी लोग चिंतित ही थे। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि चिंतित है, तो प्रभुपाद जी वो स्टेयरकेस उतरते उतरते जब उतर रहे थे झुके तो उनका जो चद्दर था वो नीचे गिरा, तो प्रभुपाद जी झुके और चद्दर ऐसा उठाने के साथ ऐसा बोलते गए ठीक है मैं 80% भी चला लूंगा, मीन 90 से 80% पे आए, मैं ठीक है मैं 80% भी चला लूंगा। फिर भी नहीं, थोड़ा आगे चले प्रभुपाद जी, आगे चले और सबके बीच में से जा रहे हैं तो सबका चेहरा देख के प्रभुपाद जी बोले लास्ट 70% नथिंग लेस देन दैट करके चले गए। मीन 70% भी अगर हम अपना प्रयत्न पूरा करके 70% कृष्ण भावना भावित बनेंगे तो प्रभुपाद जी लेके जाएंगे, 30% जो है वो कंसेशन प्रभुपाद जी दे सकते हैं, शास्त्र नहीं देता है इसको, कृष्ण तो कहते हैं सर्वधर्मान 100%। चैतन्य महाप्रभु ने कंसेशन दिया लेकिन अलग रूप से दिया, बोले हरिनाम पूरा करो अच्छी तरह से, काम से दूर रहने का एक ही तरीका हरिनाम करो मस्त, काम से दूर तो केवल हरिदास ठाकुर ही रह सकते हैं जो 100%
हरि नाम की शरण में है, बाकी असंभव है। तो ये है आज का व्याख्यान, जिसमें पुरुषों के लिए बताया प्रभुपाद जी ने कि ब्रह्मा या नारद जैसे बनो, स्त्रियों के लिए बताया कि सीता जैसी पवित्र स्त्री बनो। कोई क्वेश्चन मत करो कि हमारा पति ऐसा है कि वैसा है, अगर ऐसा प्रश्न आ रहा है तो रावण को याद करो रावण को याद करो कि रावण भी तो खतरनाक था, लेकिन मंदोदरी ने कंप्लेन नहीं किया, भले एंड में गाली दे रही है। इसके पीछे श्लोक में यही मंदोदरी रावण के शरीर को देखते हुए बोल रहे कि तुम थे ही रावण, सारे जगत को रुलाते थे, तुम परेशानी करते थे सबको, इसलिए तुमको श्राप मिला और सीता के तेज को तुम समझ नहीं पाए, महाबदमाश थे तुम, इसलिए तुम्हारा ये हाल हुआ है। लेकिन फिर भी वो रही सत्यवता पूरा जीवन, जो पति ने बोला एज इट इज यथारूप, कोई क्वेश्चन नहीं। तो हरेक सौभाग्यशाली स्त्री द्रौपदी की जैसे नहीं होती है कि उसको धर्मराज पति मिले, एक महाभागवत पांडव पति मिले, हर एक का ये सौभाग्य नहीं होता है, लेकिन अपने सौभाग्य का ही ये फल है। जैसा भी पति मिला है अपने पूर्व जन्म का कर्म का फल है, इसीलिए कंप्लेन पति का नहीं अपने कर्मों का कंप्लेन मन में सोचना चाहिए और अपना पतिव्रता धर्म निभाते हुए भक्ति करना चाहिए। और पति को भी कभी कंप्लेन नहीं करना चाहिए कैसी पत्नी मिली है, सीता जैसी क्यों नहीं मिली, द्रौपदी जैसी क्यों नहीं मिली। अरे भाई रावण, हरेक को ऐसे रावण को मंदोदरी नहीं मिलती है, हाँ किसी को ऐसी दूसरी भी मिल सकती है, कंप्लेन नहीं करना चाहिए, अपना जैसा कर्म था उस प्रकार से पत्नी मिली। ये पति पत्नी को गृहस्थ आश्रम में एक ही डेंजर है, अगर पति पत्नी का मिलाप नहीं है ना तो गया गृहस्थ, उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। और पति पत्नी का अगर दोनों का मिलाप है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है ना, तो वो नौका अच्छी तरह से इस भवसागर को पार कर सकेगी। गृहस्थों के लिए ये है, ब्रह्मचारी को सुविधा रहती है कि भाई किसी से मिलाप हुआ नहीं हुआ अपना अकेले में भजन कर लेंगे, साइड में बैठ के प्रेसिडेंट से झगड़ा हो गया कोई बात नहीं, साइड में जाके जप करो। हाँ नहीं मिला कुछ, ब्रह्मचारी कहते हैं इस्कॉन में बहुत समस्या ये वो है, तुमको क्या समस्या है, जाओ साइड में बैठ के जप करो, कोई नहीं रोकेगा टोकेगा। गृहस्थ तो वो भी नहीं कर सकेगा, साइड में बैठेगा बोले शांति से मैं जप करूंगा, तुरंत बोलेंगे बाजार जाओ ये लेके आओ, ये काम है वो काम है, स्कूल का मीटिंग है, इधर जाना है उधर जाना है, कंपल्सरी। सुगृहस्थ आश्रम मीन्स मिलजुल के पति पत्नी को अपने उनके दोषों को इग्नोर करना। यहां पे चाणक्य पंडित का बहुत अच्छा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी ने लास्ट लाइन में लिया, दूसरे को दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा हम अपने आप के साथ व्यवहार करते हैं। ये फॉर्मूला है, चाणक्य पंडित कहते हैं दूसरे जीव के साथ ऐसा ही व्यवहार करो जैसा हम अपने आप से करते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं करते इसीलिए प्रॉब्लम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुना। अल्टीमेटली जीव को इन चारे आश्रम वर्ण सभी से ऊपर जाना है, सारे वेदों के परे जाना है, हाँ और भगवत धाम जाना है, जहां पे कोई आश्रम नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई वेद का ये नहीं है, त्रैगुण्य विषया वेदा तीनों गुणों के परे जाना है, निस्त्रैगुण्य ये तीनों गुणों के अंदर आएगा ये सब डिस्कशन जो है वो, अल्टीमेटली इसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पण, एनी क्वेश्चंस कॉमेंट्स? नहीं नहीं, इसका मतलब ऐसा है कि हम अपने जीवन में जितना भी सेकेंड्स है हमारी जीवन की, वो हर क्षण हम कृष्ण भावना भावित नहीं रह पाते है ना। आपको अगर ये बताया जाए कि 2400 घंटा आप कृष्ण भावना भावित ही रहो, तो वो समय वो हमारे लिए संभव नहीं है। तो 30% कंसेशन का मतलब 30% टाइम अगर आप कृष्ण भावना भावित नहीं भी है तो चल जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 30% टाइम में हम कुछ गलत कार्यों को करें, बस अपना आराम करें, थोड़ा लेजरली लाइफ जो हमारी आदत रहती है वो टाइप का। ऐसा नहीं कि 30% कंसेशन मिला है तो चलो थोड़ा एक बॉलीवुड 3 घंटे का सिनेमा एक देख लो, वो 30
प्रतिशत में नहीं आएगा, है ना। तो मन होगा कि 24 घंटे में 3 घंटा कितना प्रतिशत होता है, हाँ 30%। वो तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं एक सिनेमा देख सकता हूँ, हाँ एक अच्छा सा एक बहुत अच्छा मूवी आया मैं देख लूंगा, टीवी चैनल ऑन कर दूंगा, चलेगा। क्योंकि बोला ना, प्रवचन में भी बताया प्रभुपाद जी ने बोला 30% चलेगा। कहने का मतलब है 30% अगर आपका अथाक प्रयत्न करते 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 भी 100% कृष्ण भावना भावित नहीं बन पा रहे, आपके मन में विचार कुछ ना कुछ इधर उधर का आ ही जाएगा, तो वो आपको समा किया जाएगा। विचार आएगा लेकिन विचार पे एक्ट मत करो। एक बार सन्यास दीक्षा देने समय शिला प्रभुपाद जी ने एक सन्यासी को दीक्षा दिया और बोला सन्यासी का अर्थ नहीं है कि काम विचारों से तुम्हारी मुक्ति हो गई, सन्यासी का अर्थ है कि काम विचारों के विचार पर तुम कार्यरत नहीं बनोगे। मुक्ति नहीं होती है, वी आर नॉट फ्री फ्रॉम द डिजायर्स बट वी विल नॉट एक्ट ऑन अ डिजायर। हम लोग को इच्छा होगी, डिजायर्स आएगी, अगर हम एक्ट करते हैं तो हम रावण हैं, अगर हम एक्ट नहीं करते अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं तो हम देवता हैं। तो 30% समय थोड़ा आराम चल सकता है बट वो नहीं, विचार जो आते हैं ना माया के वो थोड़ा कंसेशन दिया जा रहा है एक्ट नहीं करने का। ठीक है, और कोई प्रश्न? कल तो बहुत प्रश्न हो रहे थे, मैं सोच रहा था कि एक आध दो घंटा और प्रश्न वो लोग करेंगे सब लोग मिल गए। हाँ हाँ, कल का टॉपिक वैसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक था एक्चुअली। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।